તારીખ 21-3-1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 194 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 631
શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત 194 પત્ર જીવ કો માર્ગ મિલા નહીં હૈ ઇસકા ક્યા કારણ ઇસકા બાર બાર વિચાર કર યોગ્ય લગે તબ સાથ કા પત્ર પડે મુખ્ય પત્ર હૈ ઉસ પત્ર કે વિષય મેં સૂચના દી હૈ કે જીવ કો માર્ગ મિલા નહીં હૈ ઇસકા ક્યા કારણ યે સમસ્યા જો હૈ અનંત કાલ સે હમ અનેક ધર્મ મેં જન્મ પાએ વિભિન્ન પ્રકાર કે સંપ્રદાય મેં મનુષ્ય જન્મ લિયા બાકી કે તીન ગતિ મેં તો કોઈ ધાર્મિક સંપ્રદાય યા કોઈ ધાર્મિક બાત હૈ નહીં તીન ગતિ મેં તો હૈ નહીં તિરિય ચોકો ધર્મ કે કોઈ રૂઢિ રિવાજ નહીં નારકી મેં નહીં દેવલોક મેં નહીં મનુષ્ય ગતિ અનંત બાર મિલી અલગ અલગ સંપ્રદાય મેં અલગ અલગ ધર્મ મેં જન્મ લિયા મુક્તિ કા માર્ગ નહીં મિલા યાને મુક્ત હોને કા ઉપાય નહીં મિલા કિસ કારણ સે નહીં મિલા ઇસકી અંતર ખોજ જબ ચલે તો ઇસ વિષય મેં હમને એક ચિઠ્ઠી લિખા હૈ તો પઢ લેના એસા કરકે લિખ રહે હૈ ઇસ પત્ર કો अभी विशेष लिख सकने की या बतलाने की दशा नहीं है। 3 महीना हुआ है सम्यक दर्शन हुए, उस महीने में ये चिट्ठी लिख रहे हैं। करीब दिवाली के करीब करीब ज्ञान दशा प्रकट हुई थी, उसका फोर्स, उसका घोलन या उसका नशा, अध्यात्म का नशा, दृष्टि का नशा इतना था कि ज्यादा लिखा पढ़ी करने का नहीं बन सकता था। तो भी एकमात्र आपकी मनोवृत्ति कुछ दुखित होने से रुके, इसलिए यथा अवसर जो कुछ योग्य लगा तो लिखा है। शायद ये पत्र लल्लू जी को लिखा है। कि इनकी जो मनोवृत्ति थे उसमें कुछ वाकुलित थे, वो आकुलता कम हो जाए इसलिए अभी लिखने योग्य जो अवसर है, लिखने का जो लिखना चाहिए वो लिख रहे हैं। जो कुछ योग्य लगा तो लिखा है। हमें लगता है कि मार्ग तो सरल है। क्या कहते हैं कि हमें लगता है कि मार्ग तो सरल है, परंतु प्राप्ति का योग मिलना दुर्लभ है। क्या है, बहुत मार्मिक बात लिखी है कि मार्ग इतना असरल या कठिन नहीं है, लेकिन ऐसा सरल मार्ग मिले, सरलता से मार्ग मिल जाए, ऐसी कोई बाह्य परिस्थिति, ऐसा कोई योग मिले, वो बहुत दुर्लभ है। योग 2 प्रकार से है, और इस पर अपना वो अनुभूति प्रकाश में लिया है। आत्मयोग करके जो बात लिया है उसको योग कहते हैं। आत्मकल्याण का योग को आत्मयोग कहते हैं। ऐसा योग मिलना बहुत दुर्लभ है। वो अंतर बाय 2 प्रकार से है। अंतर में आत्मकल्याण की यथार्थ अंतरंग भाव से उठी हुई भावना, और उसी वक्त उस भावना को पुष्टि मिले ऐसा समागम या सत्पुरुष का योग। ये दोनों एक साथ होना बहुत दुर्लभ है। कभी भावना हुई है तो उतने तीव्रता से नहीं आई, लेकिन भावना हुई है, बाहर में कोई योग नहीं मिला। कभी श्वेतांबर संप्रदाय में कुछ एक लोग नजर आते हैं, कठिन तपस्या करते हैं और उनको और कोई बात नहीं होती है कि चलो ये तपस्या कर रहे थे, हमारे कर्म क्षीण हो गए। महाराज ने समझाया है कि तपस्या से निर्जरा होती है, तो कर्म तो हमने बहुत बांधे होंगे, तपस्या करेंगे तो खिल जाएंगे। भोले भाले जी हैं, कैसे हैं वो लोग? भोले भाले जी होंगे, हमारे क्लाइंट थे, बहुत संपन्न थे, काफी पैसा था, बहुत सरल आदमी, व्यवहार में भी उतना ही सरल था, इतना सरल आदमी देखा नहीं था व्यवहार में। अंतना चतुर्मास करने को करीब करीब आ जाता था और काफी तपस्या में रहता था संपन्न होने के बावजूद। तो एक दफा हमको बुलाया था कि आप लोग वहां आइए। हम गए थे तो ऑब्जर्व करते थे सब, कितना भोला जीव है, कर्म खेलने के लिए खाना पीना छोड़ देता है, जो भी रिवाज है उसका अनुसरण कर लेता है। उनके उस दिन एक आसन था, तो ढाई तीन घंटा एक आसन चला उसका, जो संप्रदाय में चलता है उसी तरह से। सुबह की चाय भी, खाना भी, दोपहर का चाय भी और रास्ते में शाम का खाना भी। भूले हैं, पता नहीं है कि हम क्या करते हैं, लेकिन दूसरा पाप नहीं है। दोनों संपन्न होने के बावजूद भी बहुत कंट्रोल में चलते थे कि चलो 4 महीने ऐसे ही निकालेंगे, यात्रा करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। लेकिन उसको योग नहीं है। सही बात, सही रास्ता, सही उपाय बताने वाले कोई नहीं है, उस प्रकार का योग नहीं है उसका। भाव तो है कर्म खिल जाए, वो था तो क्या है कि भाव तो कुछ ठीक है, भोले हैं, मिस पाप है, पेट में दूसरा पाप नहीं है, लेकिन बाहर में योग नहीं है। कभी सत्पुरुष मिलता है तो दुर्लक्ष कर लेता है जी, कभी कभी ज्ञानी का योग मिल जाता है तो दुर्लक्ष करता है, ध्यान नहीं देता, उदासीन रहता है या परलक्ष कर लेता है या खुद दरकार नहीं करता जितनी करनी चाहिए। नियंत्रण से भावना उस वक्त नहीं उठती, तो मार्ग उतना कठिन नहीं है, उपाय उतना कठिन नहीं है, क्योंकि अंतर में ही करने की बात है, अंतर में मुड़ने की बात है। लेकिन अंतर भाई योग की प्राप्ति दुर्लभ है। ऐसा योगानुयोग बैठ जाए कि खुद को तीव्र वृत्ति आ जाए और ऐसा ही उपाय दर्शाने वाले बताने वाले भी उनको मिल जाए, काम हो जाए उसका, ये बहुत दुर्लभ है। ये बहुत दुर्लभ है। अनंत काल में वो ऐसा नहीं बना, कभी ये बना तो वो नहीं बना, वो बना तो वो नहीं बना, ये बहुत दुर्लभ है। ऐसा कह करके ध्यान दिलाया है कि देखो तुमको अंतरंग में भावना है, पूरी पूरी भावना है, पूरी दरकार हुई क्या, और बाहर में योग है क्या, नहीं है वो दे। अगर पूरी भावना हुई है तो बाहर के योग के लिए, अगर योग नहीं हो तो योग के लिए तो बहुत आतुरता में, बहुत तड़पन में आ जाओ, वरना मेरा ये मौका चला जाएगा, मेरी जो भावना हुई है ये मौका चला जाएगा। हमको जो विचार आया था कि आत्मज्ञान से उद्भव भ्रमण का नाश होता है, उसमें कोई शक नहीं है, वो बात निशंक हो गई। आत्मज्ञान तो बात ही अनजाने हैं, उस विषय में आत्मज्ञान के विषय में ही अनजाने हैं, अनुभव प्रधान मार्ग है, उसको अनुभव नहीं है। अनुभवी पुरुष के बिना मार्ग मिले ऐसी कोई परिस्थिति देखी नहीं जाती, क्योंकि लोक संप्रदाय में तो बहुत कुछ कर लेते हैं, मार्ग को मिलने वाला ऐसा है ही नहीं। लैकिंग पॉइंट तो वही है कि मार्ग बताने वाले लोगों को नहीं है, मन परिस्थिति भी वही दिखती है, कोई आत्मज्ञान पुरुष नजर नहीं आता। पर देव ने बात कही लेकिन वो तो चले गए। तो आत्मज्ञानी पुरुष के लिए हमारा प्रयास कैसा होना चाहिए? तो अभिप्राय इतना लंबा गया, इतना लंबा गया कि अगर आत्मज्ञानी पुरुष कोई सातवें आसमान में हो या सातवें पाताल में हो तो हम जाएंगे, इसके पास जाएंगे, हमको मार्ग चाहिए, उतनी अभिप्राय में तैयारी एक दफे होगी। ऐसी जब अंतर से भावना उठे और ऐसी तैयारी हो अंतर के, तो बाहर में योग बैठ ही जाता है, और बाहर में योग बैठ जाता है तो काम भी बन जाता है। लेकिन ऐसा योग की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है, ऐसे योग की प्राप्ति बहुत दुर्लभ है। दो में से एक रह जाता है, और या तो परिणाम बदल जाता है या तो परिस्थिति बदल जाती है। हाँ, ऐसे तो अनंत पर तीर्थंकर के समोसरण में गए, निग्रंथ मुनि के समागम में गए, और सत्पुरुष तो बहुत मिले हैं, तो उसकी तो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है तीर्थंकर से। तीर्थंकर की इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, उतनी मुनि की नहीं है, जंगल में रहते हैं, सत्पुरुष तो ग्रस्त होते हैं, तो उनका मिलना आसान है, और उनका कुछ वात्सल्य का अनुराग उन दोनों से ज़्यादा है, उन दोनों को वितरागता ज़्यादा है, रागांश विशेष है तो वात्सल्य भी विशेष कर लेते हैं, कोई जिज्ञासु मिलते हैं तो काफी अपना योगदान कर सकते हैं। तो ये योग मिलना बहुत दुर्लभ है, दोनों एक साथ होना बहुत दुर्लभ है। सत्स्वरूप को अभेद भाव से और अनन्य भक्ति से नमो नमः, ये हेडिंग बना जो पत्र चिट्ठी भेजा है पढ़ने के लिए, उसका हेडिंग वो है कि अपना जो आत्मस्वरूप उसको सत्स्वरूप कहते हैं, उसको अभेद भाव से, मैंने अभेद अनुभव से, और अनन्य भक्ति से, मैंने अनन्य बहुमान से नमस्कार हो, ऐसा स्वरूप को नमस्कार करके ये चिट्ठी लिख रहे हैं। जो निरंतर भाव और प्रतिबद्धता से विचरते हैं, ऐसे ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद के प्रति अचल प्रेम हुए बिना और सम्यक प्रतीति आए बिना सत्स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती। ये बात तीनों काल में अपर सिद्धांत जैसे है कि ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष कैसे होते हैं इसका विशेषण दिया है कि निरंतर भाव अर्थ प्रतिबद्धता से विचरते हैं, उनको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की बाधा अपने आत्म साधना में नहीं। किसी भी परिस्थिति द्रव्य क्षेत्र काल भाव के वो बाहर में तो अप्रतिबद्ध है, उसमें प्रतिबद्ध नहीं है किंतु अप्रतिबद्ध है, उनसे वो मुक्त है। अनुकूलता और प्रतिकूलता दो ही परिस्थिति बाहर में, तीसरी तो कोई है ही नहीं, या तो अनुकूलता होती है या तो प्रतिकूलता होती है, वो भी लौकिक दृष्टि से। अलौकिक दृष्टि में कोई अनुकूलता भी नहीं, क्यों? कि अलौकिक दृष्टि में मैं तो ज्ञान मात्र हूं और बाकी सब कुछ है वो तो ज्ञेय मात्र है, उसमें विभाजन क्यों करेगी इतना अनुकूल इतना प्रतिकूल। दो प्रकार ज्ञान में आते हैं, कभी इस प्रकार चल रहा है, कभी इस प्रकार चलता है, तो कभी वैसा प्रकार चलता है, तो कभी वैसा प्रकार चल रहा है, लेकिन न तो वो अनुकूलता है न तो वो प्रतिकूलता है, वो तो ज्ञेय मात्र है। ज्ञानी को तो ज्ञेय मात्र है और खुद तो ज्ञान मात्र है, एक बात तो। फिर भी कभी कभी शारीरिक वेदना आदि तीव्र हो सकती है और उसको प्रतिकूलता में गिने तो ज्ञानी को पुरुषार्थ का मौका है, उसका पुरुषार्थ बढ़ता है, तो उसको प्रतिकूलता कैसे कहें, तो प्रतिकूलता वो कैसे कहेंगे, वो नहीं कहेंगे। इसलिए ज्ञानी जो है उनको अप्रतिबद्धता ही है, सभी परिस्थिति में अप्रतिबद्धता ही है। ऐसे ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद के प्रति कोई भक्ति से बात लिया है, क्योंकि सामने मुमुक्षु की बात लेना, मुमुक्षु को ज्ञानी पुरुष के प्रति अत्यंत बहुमान लिए बिना तो उसके चरणारविंद के प्रति लिया है, इस व्यक्ति के प्रति ऐसा नहीं लिया है, इसके चरणारविंद। सबसे पहले इस भाव में मान खत्म हो जाता है। ज्ञानी पुरुष के चरण का इच्छुक जो होता है या अपना आत्मकल्याण उसके चरण में बैठ करके करना चाहता है, उसको मान जैसा बड़ा शत्रु परेशान नहीं कर सकता, उसका पराभव हो गया बहुत आसान से। सबसे तकलीफ देने वाला तो वही है, स्वच्छंद भी वहां से पैदा होता है, तो एक बड़ा शत्रु तो वहां से निकल गया है। हाँ, स्वच्छंद भी यहां से पैदा नहीं। जब ऐसा भाव आता है मोक्ष को कि हम हमारा आत्मकल्याण ज्ञानी बैठ करके चरण सानिध्य चाहिए हमको, इसके चरण तो वो एकदम आ जाता, तो मान चढ़ता नहीं। वरना मान एक ऐसी प्रकृति है कि जाने अनजाने में ये दिमाग पर ये भूत सवार, भूत का सवार हो सवारी तो होती है, चीज ऐसी। क्यों कि मुमुक्षु है, उनके परिणाम संसार के दूसरे मनुष्य की बराबरी में थोड़ा बदला हुआ है और पर्याय दृष्टि गई नहीं, द्रव्य दृष्टि हुई नहीं। फिर पर्याय में अहम भाव, उसी का नाम तो पर्याय दृष्टि है, जब पर्याय में अहम भाव की परिस्थिति मिटी नहीं तो जो पर्याय में फेरफार हो गया दूसरे संसारी लोगों की बराबरी में, तो उतना मेरे में फर्क हुआ है, ये मान आए बिना कहां से रहेगा, जाने अनजाने में आई जाएगा, किसको नहीं आएगा, जो ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद में बैठ जाएगा उसको आएगा। ये सरल सुगम और श्रेष्ठ उपाय है मान बिताने का। तो सबसे पहले इसका संकेत किया है, यहां ऐसा नहीं लिखा गोपालुदेव ने कि ज्ञानी का सत्संग करना, ऐसी बात नहीं किया, बात तो उतनी ही है, ज्ञाने का सत्संग कराने की बात है, लेकिन ऐसी बात सीधी साधी नहीं किया। चरणारविंद में, चरणारविंद के प्रति अचल प्रेम और सम्यक प्रतीति लिया, चरणारविंद भी लिया, विनम्रता के विनम्रता ही इसका मतलब, अचल प्रेम हुआ मैंने इनके गुणों के प्रति, बहुत प्रेम आया। कुछ में थोड़ी गहरी बात वो है कि संसार का जो सुख है वो अवगुण से उत्पन्न हुआ सुख है, दूषित भाव से उत्पन्न हुआ सुख है। जितने भी संसार के सुख है, जितने भी प्रकार के, और मोक्ष को आत्मगुण भले ही पैदा नहीं हुए, उत्पन्न नहीं हुए, और आत्मिक सुख भी भले ही उत्पन्न नहीं हुआ है, फिर भी उसको चाहिए गुण से उत्पन्न होने वाला सुख। कौन सा सुख चाहिए उसको? गुण से उत्पन्न जिसको गुण से उत्पन्न होने वाला सुख चाहिए, उसके गुणों के प्रति प्रेम आएगा, आसक्ति होगी, प्रेम से आसक्ति होती है। बाहर में भी किसी व्यक्ति के प्रति प्रेम होता है तो आसक्ति होती है, तो ये गुणों की एक आसक्ति हो जाएगी, तो गुणवान के प्रति भी आसक्ति हो जाएगी। तो गुण है वो गुणवान के सिवा रहता नहीं, उसका स्थान और जगह नहीं, वो कोई आकाश में तो अदर चीज नहीं है, वो तो गुणवानों को ही गुण होता है। तो जिसके चरणारविंद में जाने की बात आई, उसे गुण भी देखे, गुण देखे तो गुण गुण के प्रति अचल प्रेम आया, प्रेम आया उतना नहीं लिया, अचल प्रेम। अचल प्रेम का मतलब ये होता है कि किसी हालत में वो विचलित नहीं हो रहे, क्योंकि उन्होंने गुण देखा है। क्या देखा है? गुण देखा है, गुण सुना नहीं है, गुण ग्रंथ में पढ़ा नहीं है, गुण देखा है, गुण देखा है, वो बात चली नहीं जाती। कुछ भी परिस्थिति हो जाए, गुण देखा है वो चला नहीं जाता, अचल प्रेम आता है। और सम्यक प्रतीति, प्रतीति मैंने विश्वास, सच्चा विश्वास, गुण देखने पर आया हुआ विश्वास, ये सम्यक प्रतीति है। एक तो स्वच्छंद आएगा, सबसे बड़ा दोस्त स्वच्छंद है, तो फिर माया का आना जल्दी होना हो गया सबसे पहले। तो सबसे पहला निमंत्रण मिल जाएगा माया को, दो बात तो कम से कम होगी। फिर तो एक ऐसी स्वच्छंद एक ऐसी चीज है जो बहुत से दुर्गुणों का उत्पादन हो जाता है, क्रोध भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब तीन तीन शत्रु सवार हो जाते हैं आत्मा पर, तो बेचारा आत्मा दब जाता है और हाल बेहाल हो जाता है। तो कहते हैं कि ऐसे हुए बिना सत्स्वरूप की मैंने अपने आत्मस्वरूप की प्राप्ति नहीं होती, यानी आत्मज्ञान और स्वानुभव नहीं होता। ये बात कही उन्होंने, सैद्धांतिक बात तो टैली करने की बात आएगी कि हमारी वो दशा हुई कि नहीं हुई। अगर नहीं हुई तो सत्स्वरूप की प्राप्ति की अपेक्षा रखना वो हमारे लिए बेकार है। तो अपेक्षा कहाँ से पूरी होगी? अपेक्षा तो पूरी होने वाली है ही नहीं, और आने पर दो बात लिया, ऐसा नहीं होता तो त्रिकाल में स्वानुभव नहीं होता, और अगर ऐसा होता तो अवश्य आत्मज्ञान होता है और होता ही है। क्योंकि वो तो प्रथम संकेत बोल दिया, 751 वाला प्रथम संकेत तो यही हो गया। सम्यक प्रतीति में विश्वास आ गया, पहचान हो गई, प्रतीति आएगी तो प्रेम हुए बिना रहेगा नहीं दोनों का, और विनम्रता आए बिना रहेगी नहीं। पात्रता के प्रकरण में हमने एक बात लिखी है कि पात्रता में कमी बेसी होती है मनुष्य को, कुछ को ज्यादा पात्रता है किसी को कम पात्रता है, जगत में मध्यम उत्कृष्ट को बताइए, बेटा भेद बहुत है लेकिन तीन क्लास लेवे तो जगन्य मध्यम उत्कृष्ट तीन वर्ग तो हो ही सकते हैं। कैसे नापा जाए उसका मीटर क्या है, कि जिसको जितनी गरज है उतनी पात्रता ज्यादा है, जिसको जितनी गरज कम है उतनी पात्रता में कमी है, इसलिए इसका नापने का मीटर है। जिसको गरज नहीं है वो कंडीशन रखेगा, उसको शर्ती समागम करना है, बिन शर्ती नहीं करना है, अनकंडीशनल नहीं करना है, कंडीशनल करना है। देखो बाहर में ये बात होगी तब तो ठीक है सत्संग करेंगे, अगर नहीं होगी तो नहीं भी करेंगे, या तो हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा तो करेंगे, या तो स्वास्थ्य में उनकी नहीं होगा तो नहीं करेंगे, कुछ न कुछ शरीर प्रतिबंध से लेकर के कुछ न कुछ, ये जो परिस्थिति है शर्त रखने की, शर्त होने की, ये अभिप्राय का भी प्रयास है। उसमें जो महिमा सत्संग की आनी चाहिए, ज्ञानी की आनी चाहिए, वो नहीं आती, वो महिमा ही नहीं होती, यानी उतनी गरज भी खुद को अपने आत्म कल्याण की है ही नहीं, तो होगा कहाँ से। संसार में तो जितना बड़ा लाभ होता है उतनी बड़ी गरज आए बिना रहती नहीं है, हमारे इंडस्ट्री है और केंद्र के दिल्ली के कैबिनेट का इंडस्ट्री इंडस्ट्रियल मिनिस्टर आता है और उनको ऐसा लाइसेंस देता है मोनोपोलाइज बिजनेस, कैसा जो लाइसेंस दूसरे को नहीं मिल सकता, और वो मिनिस्टर शेड्यूल कास्ट का पेड़ मंगी जमा क्या हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ऐसे आजकल जो सरनेम आती है उससे तो ऐसा ही लगता है वो यादव है, वैसे है, वैसे है, सब ऐसे शेड्यूल कास्ट के नहीं सकते, आजकल जो इलेक्शन में खड़े हैं सब और वो भी आए हैं वाघेला फिर थमाना हेगड़ा, कोई काम ही नहीं, अच्छे आदमी का तो कोई काम ही नहीं होता, सब ऐसे ही देखने में आते हैं। लेकिन हमको मोनोपोली लाइसेंस ये बुझाती है तो उनकी कितनी गरज दिखती है, साफ 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 साफ, इसको क्या उसके पियोन को भी साफ साफ करेगा, हाँ इसको नहीं, इसके पीए को, इसके पियोन को और इसके परिवार को, हैं सिद्ध पद की प्राप्ति की बात है, कितनी गरज होनी चाहिए, ये तो टेम्पररी है, इस मौके पर यहाँ लाइसेंस साइन हो गया और यहाँ आयुष पूरा हुआ, क्या फायदा, आप हुआ तो डूब गई दुनिया, सारी दुनिया तो चौपट हो गई, इधर मिल गया लाइसेंस और इधर हो गया खत्म, फिर खलास एक सेकंड, क्या फायदा, और ये तो शादी अनंत, क्या शादी अनंत, अनंत समाधि अनंत ज्ञान अनंत दर्शन समेत, कितनी गरज होनी चाहिए ये दिखाने के बाद। तो ऐसा होने पर अवश्य वह मुमुक्षु जिसके चरणारविंद की उसने सेवा की है या सेवा का भाव किया है। सेवा का तो मौका मिला या नहीं मिला, लेकिन भाव तो हुआ, अभिप्राय तो हो चुका है, उसकी दशा पाता है। पाता है क्या? अवश्य पाता है, ऐसा नहीं है, डेफिनेट ऐसा नहीं कि माल मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो बात नहीं है, गारंटेड मिलेगा। जब बात उतनी ही है तो हमको दूसरे पचड़े में क्यों जाना है? जब बात उतनी है तो हमको दूसरे पचड़े में क्यों जाना है? कहते हैं ज्ञान प्राप्ति इससे हमें हुई थी। क्या लिखा? खुद का प्रमाण दे दिया, वर्तमान में हुई है, ऐसा नहीं किया इसलिए कि अभी कोई सत्पुरुष को मिले नहीं। गत भव में कोई सत्पुरुष मिले हैं, जाति स्मरण ज्ञान था, वो बात प्रसिद्ध है, बराबर याद है। इसके पहले गोपाल देव की आत्मा ने अपने मनमाने तरीके से बहुत परिश्रम किया है धर्म साधन का, सफल नहीं हुए। वह साधन बार अनंत कियो तदुपी कछु हाथ जीवन पढ़ो, बिन सदगुरु को भेद माने रहस्य। इसका जो रहस्य है वो सदगुरु के सिवा नहीं मिलता। ऐसी क्या बात है? बात तो वो कहते हैं ऐसे शास्त्र में भी लिखी तो है, वो भी सत्पुरुषों ने ही लिखी है, बड़े बड़े आचार्यों ने ही लिखी है, लेकिन वहां परिणति देखने को, शास्त्र में परिणति देखने को नहीं मिलती। ये चीज रही गुणों को देखने की, सुनने की नहीं, देखने की चीज है। वही सत्संग का रहस्य है, यही भेद है कि प्रत्यक्ष तौर से चीज देखने को मिलती है और देखने से जो बोध होता है वो सुनने से कभी नहीं होता, पढ़ने से कभी नहीं होता, ये बोध देखने से होता है, ये इसका रहस्य है। तो उनको भी वो रहस्य की प्राप्ति गद्भों में हुई थी, इसलिए लिख दिया कि ज्ञान प्राप्ति इससे हमें हुई थी। खुद का ही प्रमाण दे दिया। सजीवन मूर्ति चाहिए, क्या सजीवन मूर्ति चाहिए? सजीवन मूर्ति के बिना एक सौ अठानवे छे ने, ये हमारा निश्चय है। मात्र कोई दृढ़ जिज्ञासु हो उसका ध्यान मार्ग की ओर जाए, ऐसे थोड़े शब्दों में धर्म कथा करें। बाकी अभी तो आप सब अपनी अपनी सफलता के लिए मिथ्या धर्म वासनाओं का, विषय कषायों का, की प्रियता का और प्रतिबंध का त्याग करें। जीव अपनी कल्पना से, ऊपर से पांचवी डिटी, सातवीं डिटी, जीव अपनी कल्पना से किसी भी प्रकार से सत को प्राप्त नहीं कर सकता। मैंने अपनी इच्छा से मनमानी करके, सजीवन मूर्ति के प्राप्त होने पर ही सत प्राप्त होता है, सत समझ में आता है, सत का मार्ग मिलता है और सत पर ध्यान आता है। सजीवन मूर्ति के लक्ष्य के बिना जो कुछ भी किया जाता है वह सब जीव के लिए बंधन है। क्या है? फायदा तो नहीं है किया जाता, मैंने धर्म साधन किया जाता है, फायदा तो नहीं है, बंधन है। ये मेरा हार्दिक अभिमत है। गुजराती भाषा में तो बोल सकते हैं हार्दिक, ये हमारा हार्ट है, हमारे हार्ट हृदय में से ये बात निकलती है। 198 में किया है, लक्ष्य में वो बात होनी चाहिए कि अगर सजीवन मूर्ति के बिना हम कुछ भी करेंगे पत्तो लागवानो नथी, मार्गनो पत्तो लागवानो नथी, ए वात नक्की छे। एवुं लक्ष्यमां होवुं जोईए एम कहेवाय छे, ए वात लक्ष्यमां होवी जोईए एम कहे छे। अने जिसको भी अंतर में से यथार्थ आत्मकल्याण की भावना होती है उनको ये फर्स्ट थॉट आता है कि साथ में पाताल में भी जाना पड़ेगा तो जाएंगे, इसके बिना चलने वाला है नहीं, क्योंकि हम तो अनजाने हैं और अनजाने और अंधे बराबर होते हैं, और अंधा नजदीक हो तो भी दूर चला जाए तो उसको कहाँ पता चलता है कि वो दूर जा रहा है, उसको लगता है कि मैं तो चलता हूँ लेकिन जाता है दूर, तो उसको वो भान है कि मैं अनजाना हूँ, अंधा हूँ और ये मार्ग तो, अरे एक एकड़ा भी एक अंक भी बिना सिखाए किसी को आया नहीं, आता नहीं, तो ये तो संसार पार करने की विद्या है, पूरा संसार अनंत काल का संसार पार करने की विद्या है, अनंत संसार के मिथ्या संस्कार को मिटाने की विद्या है। एक प्रकृति को पास कितना कितने बार हार होती है वो तो अनुभव को समझे तो पता चलता है कि बार बार कितनी पछाड़ खानी पड़ती है, अटैक आता है अंदर से उदय का और उलझ जाता है। ये तो बहुत बड़ी बात है, ऐसे अपने मनमानी तो उसमें चलती नहीं है, तो उसको जो अंतर्स की भावना आती है उसको तो भान होता है और उसको पहला विचार आता है, फर्स्ट थॉट आता है कि मुझे चाहिए। वो बात लक्ष्य में जिसको नहीं है उनको सही भावना हुई नहीं, यथार्थ भावना हुई नहीं, यथार्थ भावना का ये सिद्धांत। और कोई ऐसा कहता है कि हमको तो कोई जरूरत नहीं है तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि उसको आत्मकल्याण करने की जरूरत नहीं है, वो बात सिद्ध करने की साबित करने की जरूरत है ही नहीं, ऐसी बात है। ज्ञान प्राप्ति इससे हमें हुई थी, वर्तमान में इसी मार्ग से होती है, जिसको होती है तो होती है, और अनागत काल में भविष्य में भी ज्ञान प्राप्ति का यही मार्ग है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। दूसरे उपाय से कोई करना चाहता है वो भुला हुआ है, कोई शक नहीं है, कोई संशय, आगे भी इसी बात के अनुसंधान में बहुत ठोस बात करते हैं कल के साथ। किसी को नहीं देना, पूरे सुबह से शाम तक वहीं रहना, वो कर लेते थे। तो ये प्रमाद है, दूसरा दूसरा काम करना वो प्रमाद है। तो चलो सत्संग नहीं मिल रहा है तो दूसरा काम निपटा लें, ये नहीं होना चाहिए। प्रमाद को चित्त में अवकाश देना योग्य नहीं है, जगह ही नहीं देना चित्त में, मैंने परिणमन में और अभिप्राय में दोनों में, चित्त का अर्थ दोनों होता है, अभिप्राय में भी वही बात होनी चाहिए, हमको शिथिल नहीं होना। बराबर काम में लगे रहना है, हमारा समय बहुत अमूल्य है, एक पल भी हमको सावधानी से बनना है। उतनी दरकार आए बिना आत्महित होता नहीं, क्या उतनी दरकार आए बिना आत्महित होता नहीं? समागम का अंतराय जानकर चित्त में प्रमाद को अवकाश देना योग्य नहीं है। परस्पर मुमुक्षु भाइयों का समागम अव्यवस्थित होने देना योग्य नहीं है। हमारा समागम नहीं है तो मुमुक्षुओं का जो समागम है वो भी नियमित व्यवस्थित ही रखना है। प्रमाद के कारण से उसमें फेरफार भी नहीं करने का, ये परम सत्संग नहीं मिलता है तो चलो छोड़ो उसको, वो बात नहीं। कभी कभी तो इससे बहुत फायदा होता है, कभी कभी तो मुमुक्षुओं को मुमुक्षु के समागम से बहुत फायदा होता है। कैसे? कि हमारे से आगे वाला का प्रत्यक्ष परिणाम वहां दिखने का मौका। सत्पुरुष तो वो बात को समझाएगा लेकिन उनका स्टेज अलग है, तो वो बात वहां दिखने को नहीं मिलेगी, जबकि यहाँ तो दिखने को मिलेगी और प्रत्यक्षता का बोध जल्दी असर करता है। इस तरह से परस्पर मुमुक्षु भाइयों के समागम को अव्यवस्थित होने देना योग्य नहीं है। निवृत्ति के क्षेत्र का प्रसंग न्यून होने देना योग्य नहीं है। अब हम नहीं है तो आप लोग निवृत्ति में, निवृत्ति क्षेत्र में चले जाना है, सत्संग बढ़ाने के लिए, भावना बढ़ाने के लिए निवृत्ति क्षेत्र में। मुमुक्षु को जाना भी चाहिए, ऐसा लेते हैं वो भी व्यवस्थित रहना, उसमें कमी नहीं करना। निवृत्ति क्षेत्र का प्रसंग न्यून होने देना में ना कम नहीं करना, योग्य नहीं है। निवृत्ति क्षेत्र में जाने में, रहने में और प्रवृत्ति क्षेत्र में रहने में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है, छोटा मोटा अंतर नहीं है, बहुत बड़ा अंतर है। क्यों? कि एकदम उपयोग की निवृत्ति हो जाती है निवृत्ति क्षेत्र में एक ही काम करने के बाद, यहाँ तो वो भी करना है और वो भी करना है।